श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने अपने अध्ययन में 28 अध्याय का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, हम समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या दबाव में हैं या किसी प्रकार के तनाव में है। पिताजी, आप उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम यरूशलेम के बारे में निकट भविष्य और प्रभु राज तक की भविष्यवाणियां देख रहे हैं, यरूशलेम हर बार नष्ट किया गया और पुनः बसाया गया। अंत में यरूशलेम एक बार और गिराया जाएगा, परंतु प्रभु यीशु उसे बचा लेगा और वहां अपना राज्य स्थापित करेगा। हम देखेंगे यरूशलेम, अर्थ और संदेश। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया की पुस्तक 29 अध्याय उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। मेरे मित्रों, मैं कह चुका हूं कि यशाया साधारण स्तर का भविष्यद्वक्ता था और उसके वचन आज के समाज के लिए उचित एवं उपयुक्त हैं। क्या परमेश्वर ने उन्हें वास्तव में भारी नींद में डाल दिया था? उसने यह कैसे किया? वह इसराइल को ज्योति प्रदान करता रहा, परंतु वे उसका त्याग करते रहे। वे परमेश्वर द्वारा दिए गए सत्य को ग्रहण नहीं करते थे। वे देख नहीं पा रहे थे, अर्थात वे अंधे थे, जैसा कि आज हम में से कई लोग सत्य को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार मनुष्यों को भारी नींद में डालता है और प्रकट करता है कि वे अंधे हैं। यहां तक कि भविष्यद्वक्ता और हाकिम भी परमेश्वर के इस उद्धार को देख नहीं पा रहे थे। वे परमेश्वर के शत्रुओं के समान ही अंधे थे। वे ऐसे थे जैसे कोई शराब पीकर बेसुध हो गया हो। हम आगे पढ़ते हैं यशाया 29 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। मेरे मित्रों, उस युग के मनुष्य यहां तक कि परमेश्वर के लोगों का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही था कि भविष्यवाणी उनकी समझ के बाहर थी, वे उस विषय में अंतर्दृष्टि ही नहीं रखते थे, जैसे कि वह कोई ऐसा भेद हो जिस पर विचार करना वर्जित हो। आज के प्रचारकों और कलीसिया के अगुओं में भी अधिकांश का यही स्वभाव है। मैंने स्वयं सेमिनारी के शिक्षकों और प्रचारकों को कहते हुए सुना है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुहरबंद पुस्तक है, इसे कोई नहीं समझ सकता। वे जो कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बंद है और हम उसे समझ नहीं सकते, ठीक वैसे ही है जैसे यशाया के समय के इसराइली थे, जो कहते थे कि भविष्यद्वाणियां समझना उनके लिए नहीं है। दूसरी ओर आज के विश्वासी यह भी कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय उनके पास नहीं है। धर्मशास्त्र के अज्ञान के प्रति आज विश्वासियों के पास वाहनों की कमी नहीं है। मेरे मित्रों, आज लोग अपने लिए समय देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना नहीं चाहते। प्रकाशन का यूनानी भाषा में अर्थ है किसी बात पर से पर्दा उठाना कि वह समझ में आ जाए। सच तो यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सबसे सरल पुस्तक है, परंतु उसको समझने के लिए हमें उससे पूर्व बाइबल की 65 पुस्तकों को समझना होगा, अर्थात उसे पढ़ना होगा। वह पुस्तक बाइबल की अंतिम पुस्तक है, और आप किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए अंत से आरंभ नहीं करते हैं। यह कहना मूर्खता है कि वह उपमाओं और प्रतीकों की पुस्तक है और बंद पुस्तक है, जिसे समझना हमारे लिए नहीं के बराबर है। मैंने तो उस पुस्तक की रूपरेखा बनाने में देखा है कि वह एक अत्यधिक आसान पुस्तक है। यशाया के समय में भी इसराइली ऐसी ही बातें किया करते थे। परमेश्वर उसका दंड उन्हें देगा, क्योंकि जब वह ज्योति दिखाता है और आप आंखें नहीं खोलते तो आप अंधे हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 पद में परमेश्वर प्रकाशन के विषय क्या कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। स्पष्ट है कि यह पुस्तक बंद नहीं है और यह सबके लिए है, ताकि सब कोई पढ़े और जाने। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप यशाया के समय में होते तो आप यशाया की बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे मंदिर में जाते थे। मंदिर आराधकों से भरा रहता था, बलि के समय वहां बहुत लोग इकट्ठे होते थे। मंदिर में पुरुषों, स्त्रियों और अन्य जातियों के लिए अलग अलग स्थान हुआ करते थे, तो फिर परमेश्वर को उनसे शिकायत क्यों थी? वे सब आराधना में आते थे और मुंह से विधियों को दोहराते थे, जैसे हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना को आज कलीसिया में दोहराते हैं, परंतु उनके लिए उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। वे कहते तो थे, परंतु उसमें उन्हें विश्वास नहीं था। वे परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे। परमेश्वर की शिकायत थी कि उनके मन उनसे बहुत दूर हैं। यही कारण था कि उसने उन्हें दंड दिया और यही कारण है कि वह हमें भी दंड देगा। आज संसार का श्राप धर्म है। परमेश्वर चाहता है कि आप धर्म का त्याग करके प्रभु यीशु के पास आ जाएं। धर्म आज अनेकों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। मैंने किसी से यह बात कही तो उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं स्वभाव से ही धर्मी हूं। मेरे मित्रों, उसमें पतित स्वभाव था परंतु धार्मिक प्रवृत्ति थी। वह मेरी बात सुनकर चौंका जब मैंने उससे कहा कि उसे धर्म का त्याग करना होगा और मैं धर्मी नहीं हूं। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक प्रचारक धर्मी नहीं है। यदि आप धर्मी नहीं है तो फिर क्या है? मैंने उससे कहा कि मैं एक पापी हूं जो मसीह के पास आ गया हूं और आज उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में हूं। यह धर्म नहीं, व्यक्तिगत संबंध है। जी हां, क्या आपके पास मसीह है या नहीं? यही सबसे बड़ी बात है। यशाया 29 उसके 15 पद में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। मेरे मित्रों, उसकी प्रजा की दशा इतनी गंभीर है कि वह दूसरी बार हाय कहता है। इस अध्याय में दो हाय हैं, क्योंकि पहला, उनका व्यवहार ऐसा था कि परमेश्वर न तो देखता है और न ही जानता है। दूसरा, वे सोचते थे कि कोई अंतर नहीं पड़ता है। यरूशलेम प्रतिष्ठा एवं महिमा के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, यशाया 29 अध्याय के 17 पद में, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन और फिर फलदायी बारी न बन जाएगा और फलदायी बारी जंगल न गिनी जाएगी? यह भविष्य की बात है जब यरूशलेम और इसराइल को प्रतिष्ठा एवं महिमा प्राप्त होगी। परमेश्वर ने उस नगर का त्याग नहीं किया है। आज वह नगर परत के ऊपर परत जमा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उसे दंड देता रहा है और आगे भी दंड देगा। परंतु यरूशलेम का पुनरुद्वार होगा और वह परमेश्वर का नगर ठहरेगा। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय के 18 पद में लिखा है, उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। जी हां, बहरे सुनेंगे और अंधे देखेंगे, क्योंकि उस समय परमेश्वर का राज्य होगा। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इसराइल के पवित्र के कारण मग्न होंगे। एक कहावत है, जो ना देख पाए उसके जैसा अंधा कोई नहीं है। आज भी और यशाया के युग में भी स्वैच्छिक अंधापन था, परंतु प्रभु राज्य में वे देखेंगे। यशाया की पुस्तक 29 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे लिखा है, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इसराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के नाम के साथ वे क्या करेंगे? वे उसे पवित्र करेंगे, वे परमेश्वर के नाम को विशेष स्थान प्रदान करेंगे, जैसे कि वह एक अति महान नाम है। आज परमेश्वर के जनों को अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को पवित्र प्रकट करना है। यह एक परम पवित्र नाम है, परंतु क्या हम उसे ऐसा मानते हैं? लेकिन उस समय लोग ऐसा मानेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 29 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 30 और 31 से अपने अध्ययन को करेंगे। जिसका विषय है यहूदा को चिताया गया कि अश्शूरों के भय के कारण वह मिस्र के साथ संधि न करे, वह परमेश्वर के पास आए। इन दो अध्यायों में स्थानीय परिस्थिति मुख्य है, परंतु दूरस्थ भविष्य की चर्चा भी इसमें की गई है। यहूदा ने परमेश्वर की बात मानकर मिस्र से संधि नहीं की, परंतु उत्तरी राज्य ने भविष्यद्वक्ता की बात पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप वे बंधुआई में चले गए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 4 पद में यहां पर दक्षिणी राज्य ने उत्तरी राज्य के कटु अनुभव से लाभ उठाया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मिस्र से संधि न करने की चेतावनी है। यशाया की पुस्तक 30 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। यह चौथी बार हाय है, क्योंकि यह चेतावनी है। परमेश्वर कहता है कि मिस्र से सहायता लेना मरीचिका है, मृग मरीचिका है, जो किसी लाभ की नहीं होती है। आपको पानी जैसा दिखता तो है, परंतु वहां पानी होता नहीं है। यशाया 30 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि मुक्ति के लिए परमेश्वर की ओर फिरने की चेतावनी। पद 5 में परमेश्वर उनसे कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। यह धर्म शास्त्र का एक अद्भुत पद, एक रत्न है। हम पढ़ते हैं यशाया के पुस्तक 30 अध्याय उसके 18 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे प्रियों, उतावली न करें, यह न कहें हम अंत के समय में हैं और प्रभु इस वर्ष या अगले वर्ष तक आ जाएगा। परमेश्वर कहता है, मुझे अपनी योजना बनाने दो, मैंने तुम्हें कोई निश्चित समय नहीं दिया है। परमेश्वर की बाट जोहना सीखें। प्रभु के आने और अपनों को संसार से ले जाने का विषय प्रतीक्षा का विषय है। हमें प्रबोधन किया गया है कि वे जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर को उतावली के लिए बाध्य न कर दें, और आप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को किसी बात की जल्दी नहीं है। शायद घटनाक्रम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, शायद आप उसे बदलना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर को अपना काम आप करने दें। उसका समय अनंत है। आप और मैं जब उसके अनुसार चलेंगे, तब हमारा जीवन यहां भी आसान हो जाएगा। हम आगे देखते हैं अश्शूरों को परमेश्वर की मार की घोषणा। यशाया के पुस्तक 30 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम पढ़ते हैं, अश्शूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोंटे से मारेगा, जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी, और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है, वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है, वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। मेरे मित्रों, यहां व्यक्त अश्शूर महाक्लेश में परमेश्वर के शत्रु होंगे। तोपेत वहां एक ऐसा घृणित स्थान था जहां मूर्ति पूजा की प्राकाष्ठा थी, वे बच्चों को वहां बलि चढ़ाते थे। उसे आग की झील का सबसे भयंकर स्थान कहा गया है। राजा से यहां अभिप्राय है पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन अर्थात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह क्या ही भयानक होगा जो शैतान के अनुयायी होंगे। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 30 भी समाप्त होता है और हम अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 31 में। अध्याय 31 में यशाया एक बार और परमेश्वर के लोगों से कहता है कि वे सहायता के लिए मिस्र के पास न जाएं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, वही यरूशलेम को बचाएगा। घोर संकट और इसराइल की मिस्र की ओर झुकती प्रवृत्ति के कारण यशाया यहूदा को उसके अनर्थ की चेतावनी देता है। वह उन्हें ऐसा कदम उठाने से बार बार मना करता है, जैसा कि आज परमेश्वर मुझे और आपको भी कई बार गलत काम करने के लिए बार बार चेतावनी देता और मना करता है। भविष्य में इसराइल गलत व्यक्ति से समझौता कर लेगा, वह ख्रिस्त विरोधी को ग्रहण करेगा। परमेश्वर उन्हें यहां इसकी चेतावनी देता है। परमेश्वर उसकी अपेक्षा अन्य किसी से सहायता लेने के कारण उन्हें दंड भी देगा। यशाया की पुस्तक 31 अध्याय के एक पद में लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। मेरे प्रियो, यह पांचवी बार हाय शब्द आया है, अर्थात पांचवी हाय और उन पर है जो मिस्र से सहायता मांगने के लिए गए थे। इसमें आपके और मेरे लिए संदेश है, हाय हम पर जब हम परमेश्वर की अपेक्षा भौतिक वस्तु या किसी मनुष्य की सहायता खोजते हैं। मेरे मित्रों, आप मुझे गलत न समझें, कई बार ऐसा ही होता है कि हम परमेश्वर की निकटता में आने के बजाय हम किसी मनुष्य और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। परमेश्वर यह नहीं कहता कि आप अंतरिक्ष में जाकर चक्कर काटने लगें। परमेश्वर तो चाहता है कि आप बुद्धि काम में लें, परंतु परमेश्वर यह भी चाहता है कि जब आपको आवश्यकता हो तो आप सबसे पहले उसके पास जाएं। मेरे मित्रों, आप सहायता के लिए कहां जाते हैं? मुझे कभी कभी ऐसे पत्र मिलते हैं जिनमें मुझसे सहायता मांगी जाती है कि उसे किसी परिस्थिति विशेष में क्या करना है। मैं तो अपने जीवन की परिस्थितियों में ही नहीं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य से सहायता लेना बुरा नहीं है, परंतु अंततः हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए। भजन संहिता 20 उसके 7 पद में भजनकार कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जी हां, सांसारिक विचार है कि धन निवेश करना अच्छा है, मिस्र से सहायता लेना अच्छा है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मिस्र है, इसलिए कि परेशानियों का मुख्य कारण था कि वे न तो परमेश्वर की ओर निहारते थे और न ही उसे खोजते थे। आज जब हमारे घरों में संपन्नता आ जाती है तो हम परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे, इसलिए वे सांसारिक शक्तियों के पास भागते थे और आज भी हम ऐसा ही करते हैं। यशाया 31 अध्याय के 5 पद में लिखा है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर यरूशलेम को बचाएगा और संभालेगा। हम देखेंगे कि हिजकिया के युग में उसने ऐसा किया था। परमेश्वर उन्हें आश्वासन दिलाता है कि अश्शूर यरूशलेम को नहीं जीतेंगे, और वह ऐसा करता भी है। यशाया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, तब अश्शूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्ठा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। मेरे मित्रों, मनुष्य की यह वाणी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि उसकी पराजय इसराइल के बल के कारण नहीं होगी, परमेश्वर उन्हें मारेगा। यरूशलेम का विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए था, परंतु वे किसी और पर विश्वास कर रहे थे। मेरे मित्रों, यह अध्याय हमारे व्यक्तिगत बल और सहायता के लिए एक उत्तम अध्याय है, ताकि हम इस बात को जान ले कि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, न कि मैं और आप। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप उसके पास आए, वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पास आए। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि आपको किसी के पास सहायता के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास आना है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ए खुदा तू है बड़ा, ए खुदा तू है सदा, ए खुदा तू पाक है, ए खुदा तू शक्ति है, जिंदगी के सोते में मुझे पाने को तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी की राहों में चला, आजा मेरे जिंदा खुदा, जिंदगी की राहों में चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला, जिंदगी के सोते में मुझे जिंदगी पाने को तू चला। ए खुदा।